fella
तो हमारे जो आँख कान है नाक है उसके सुनने के बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि चिड़ियों या फिर जानवरों के बहुत सारे अलग 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 आवाज़ होती है, अपने आवाज़ें होती हैं। तो उसके अतिरिक्त हमारे मनुष्य उनकी आवाज़ होती है, मनुष्य के स्वर, मनुष्य का ध्वन। कभी कभी तो उसको ध्यान नहीं दिया जाता, ज्यादातर तो ज्यादातर तो अपने हित के लिए करते हैं। मेरा कमरा, मेरा घर, मेरा सामान इत्यादि के मैं की भावना ज्यादातर आते हैं, या उसके अतिरिक्त हमारे रूप, गंध, स्पर्श इत्यादि के बारे में ज्यादा आसक्त रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें को सुनते हैं। जब इनको सुनते हैं तो उससे हमें आसक्ति पैदा होती है या उसके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। तो शब्द कोई भी हो तो जो हमारी अज्ञानता उसको नष्ट करना करने के लिए होता है या फिर जिसको हम नहीं जानते हैं उसके लिए तो चित्त जहाँ तक जो हमारे चित्त को जो हमारे मन को खराब करता है उसका कार्य क्या है वो किस प्रकार से करता है तो उनको अच्छी तरह से जानना चाहिए गहरे से जानना चाहिए और जो हमारे मन को दुखी करता है तो उसको परिचित उसके विचार उसके बारे में परिचित होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है जो हमारे मन को दुखी करता है केवल परिचय ही नहीं होना चाहिए तो उसको किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है इस प्रकार की जो अज्ञानता है किस प्रकार के क्लेश है उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है तो हम सभी लोग चाहते हैं दुख की प्राप्ति न हो क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो हम सभी में थोड़ा सा ज्ञान है बुद्धि है और इस दुनिया में मनुष्य होने के बाद शब्द हुए शब्द के बाद अक्षर बने और लिखित रूप में आए तो उसके अतिरिक्त बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हुई तो अगर बहुत ज़्यादा शब्द ना होते बहुत ज़्यादा आवश्यकताओं वाले शब्द ना होते तो इसलिए मनुष्य की जो मनुष्य अभी के लिए और पर दूसरे अपने आने वाले जीवन के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इसलिए भगवान बुद्ध के जो शब्द हैं जो वचन हैं वो हट कर के हैं उन्हें कई खास कर हैं और चिरचिरी होंगी द्वादी भगवान बुद्ध के समय से भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भी आपका धर्म है उसको मानना चाहिए ऐसा नहीं है कि सारे चीज़ें वो आप लोग बौद्ध धर्म को ही माने ऐसी बात नहीं है तो कुछ चीज़ ऐसी स्वतः से उत्पन्न होती हैं जो स्वतः से उत्पन्न उनको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो हम लोग कुछ घंटों तक हम लोग बातचीत यहाँ करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर बातें यही करते हैं जो हमारे क्लेश का जो सत्र है उसको नष्ट करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो चित्त है वो चित्त का स्वभाव तो निर्मल होता है लेकिन स्वच्छ स्वभाव वाले चित्त में कभी भी क्लेश उत्पन्न नहीं होता है लेकिन जो भी क्लेश उत्पन्न हो गए जो भी बुराई उत्पन्न हो गई हैं वो छड़े गए हैं वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती हैं वो छड़े को होती हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं तो नाम कुछ भी दिया जाए तो जो अज्ञानता वाले शब्द हैं उनको जानना चाहिए और उनको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए जानना जरूरी है जानने के बाद नष्ट करना बहुत जरूरी होता है तो सूत्रों में देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से सूर्य फूल पर पड़ने से खिल जाता उसी प्रकार से भगवान बुद्ध के वचन से हमारी जो अज्ञानता है क्लेश है वो क्लेश नष्ट हो जाते हैं और अज्ञान रूप प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और उनके दर्शन से उनके धर्म सुनने से हमारे जीवन में धीरे धीरे खुशी उत्पन्न होती रहती है तो इस प्रकार के जो खुशी है वो खुद उत्पन्न करनी चाहिए और भगवान बुद्ध का जो अंदर ज्ञान है वो चाहे एक दूसरे हमारे अंदर डालने वो संभव नहीं हो सकता तो भगवान बुद्ध के जो दर्शन उनको सुनना चाहिए तो भगवान बुद्ध के कार्यों की वजह से दुनिया में प्रकाश आया लोगों के क्लेश नष्ट उन्होंने ऐसा मार्ग बताया तो बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने उनके मार्ग पर चलते हुए उनके मार्ग पर चलते हुए भूमियों को प्राप्त किए हैं, और अभी तक जो लगभग 2600 वर्ष वर्ष बीत चुके हैं, और भगवान बुद्ध के दर्शन को ध्यान देते हुए उनको पढ़ने के बाद जो हमारे अंदर के क्लेश हैं उन्होंने अपने क्लेश को नष्ट करके बहुत सारे लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। और आज के इस 21वीं शताब्दी में देखा जाए तो बाहरी जो वातावरण है या बाहर की जो वस्तुएं बहुत सारा विकास की हैं, तो जिन आजकल भी ऐसा देखने को मिलता है जिनके मन तो बहुत जिनके पास धन तो बहुत है लेकिन भी उनके मन अभी भी खुश नहीं है, इस प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। और जब मन की जब परेशानी उत्पन्न होती है तो केवल श्रद्धा से ही संपन्न नहीं हो सकता है, तो चित्त का जो दुख है वो कैसे उत्पन्न होता है, किन वजह से होती है, हेतु क्या होता है, तो इसके बारे में हमें सोच विचार करना चाहिए। तो पूर्व जन्म पर्व जन्म की बातें तो दूर की बात है, जो अभी के बातें हैं उनको जानना चाहिए कि क्यों हमारा मन दुखी होता है, क्यों सुखी होता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। और आज के लोग भी उसके बारे में सोचते हैं, विज्ञान इत्यादि उसके बारे में ध्यान देते हैं। भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो काफी महत्वपूर्ण है, और जैसा कि जय रिम्पोछे ने भी कहा है तो भगवान बुद्ध के लगभग 84,000 धर्म स्कंद हैं, तो ये जितने भी धर्म उपदेश दिए हैं उनका सारे का सारा जो सार है वो हमारे प्रति समत्वात पर निर्भर होता है। तो ये और प्रति समत्वात का अर्थ यही होता है कि अपने स्वयं से सिद्ध नहीं होते हैं, वो भी किसी पर निर्भर होकर उत्पन्न होते हैं। तो महायान बहुत दर्शन जहाँ जहाँ फैला उस देश के बहुत सारे लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ प्रवचन सुनने आए हुए हैं, और हमें सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो महायान देश के हैं वो पाली परंपरा को मानने वाले नहीं हैं। तो ज़्यादातर हम सभी लोग जो नालंदा परंपरा के हैं उसको धर्म मानने वाले हैं, नालंदा परंपरा को सीखने वाले हैं, और जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र को सब पढ़ते हैं, जो भी नालंदा परंपरा का है वो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र को पाठ करता है। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है जो चाय पीने के बाद उसका पाठ करते हैं, उससे पहले करते हैं ये पूछ रहे हैं। तो ज्यादातर इसका इस प्रज्ञा पारमिता संस्कृत में नहीं है, चाइनीज में नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है, तो ऐसे तिब्बती में है, तो तिब्बती में उसके अर्थ को समझना चाहिए, माफ करना, सभी भाषा में उसके अर्थ को समझना चाहिए। मैं सभी लोगों को कहता हूँ तो तेंगुर शास्त्र अनुसार उसके अलग उसमें अर्थ के बारे में बताया गया है। तो माध्यमिक दर्शन का भी व्याख्या की जाती है, खासकर उसमें मूल माध्यमिक करिका का भी जिक्र आता है। तो जो लोग नहीं जानते उनके मध्य में ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर कोरिया वियतनाम जब मैं उनको प्रवचन देता हूँ तब उनके मैं परिचय देता हूँ। एक बार एक विद्वान वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सभी लोगों को प्रज्ञा पारमिता सब लोग प्रज्ञा पारमिता को पाठ तो करते हैं लेकिन अर्थ को नहीं जानते हैं। तो भगवान जो बुद्ध बने हैं वो बिना हेतु के नहीं बने, वो भी हेतु से पैदा हुए हैं। बिना हेतु से बुद्ध बने हुए ऐसी बात नहीं है। और वो भी बुद्ध तभी बने जब बार बार उसका अभ्यास किया उन्होंने। और बोधचित्त का अभ्यास बार बार करने का अभ्यास करने से ही बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। जब हम भगवान बुद्ध के विशेषता के बारे में देखते हैं तो फिर सर्वज्ञ की बात की जाती है। जिन्होंने सर्वज्ञता को जान लिया उसे बुद्ध कहा जाता है। जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी धर्म हैं, उन सारी चीज़ों को जान लेना। तो इस प्रकार के सारे धर्मों को जान लेने का जो जड़ है वो हमारे दिल में होता है, बीज हमारे दिल में होता है। तो फिर जो हमारी प्रज्ञा है वो प्रमुख होती है। तो ये जो हमारी जो भूमि है, एक से लेकर के दूसरी भूमि तक प्रवेश करना चाहिए। तिला साउंड खेंजे सिबी होंगे, चिर 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 होंगे, खेल पे होंगे बंदा। तो तीन कालों के बुद्ध चित्त पर निर्भर होकर ही बुद्धत्व बने हैं। तो इसलिए अगर हम लोग भी बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए। तो सेरफ पार्वती प्रज्ञा पारमिता का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या है, उसको जानना चाहिए। जैसा कि उसमें कहा गया जो हमारे रूप हैं, या रूप ही शून्य, शून्य ही रूप है। तो हमारी जो अज्ञानता है, जिस चीज़ को हम लोग नहीं जानते हैं, या हमारे क्लेश है, उसकी वजह से, अज्ञानता की वजह से क्लेश उत्पन्न होते हैं। और उस अज्ञानता को जानना चाहिए। तो ये हमारी जो अज्ञानता है उसको केवल हमारी विद्या के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। विद्या को विद्या के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। बिना अविद्या के अगर अविद्या को नष्ट करना चाहें तो संभव नहीं हो सकता है। तो शून्यता का अर्थ क्या होता है? शून्यता का अर्थ पांच स्कंद जी शून्य हैं इत्यादि के बारे में कहता हूँ मैं। हमेशा मैं इसकी व्याख्या करता रहूँ, शायद आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो स्वभाव से हमारे पांच स्कंद भी शून्य हैं। तो जो इसमें भी शब्द आता, भी तिब्बती में भी आता है कि रूप भी शून्य है। रूप और जो भी का अर्थ है, जैसे कि रूप आदि भी शून्य, भी का यहाँ शब्द आता है, वो चीन भाषा में नहीं आता है। तो चीन के द्वारा जिस देश में गया, जैसे कि कोरिया है, जापान हो, वियतनाम है, ये चीन के द्वारा फैला है। तो हमारे जिस तिब्बती भाषा है उसमें ये देखने को मिलता है। लेकिन संस्कृत भाषा में इसका अभ्यास जब देखा गया, इसका परीक्षण किया गया कि भी जो शब्द है संस्कृत में है कि नहीं, तो संस्कृत में देखने को मिलता है। हालांकि ये एक अक्षर है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो उदाहरण के लिए जो तो इसका अर्थ यही होता है कि हमारे पांच स्कंद शून्य हैं ही, उसके अतिरिक्त जिन स्कंदों से ये निर्मित होते हैं वो भी शून्य होते हैं। इस वजह से भी का अब आता है, सब जाता है। जो धर्म निरात्म को मानते हैं वो भी इस बातों को मानते हैं, ये मायान को मानने वाले लोग मानते हैं। और तो प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन के दौरान उस समय 4-8 सत्यों का प्रवचन दिया गया था, जैसा कि मैंने कल कहा था। तो इसमें उसमें किस चीज़ों को उपयोग करना चाहिए, किन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, किन को छोड़ना चाहिए, ये हमारे जो जो प्रति समुदाय के 12 कड़ियाँ हैं उसमें देखने को मिलती हैं। जैसा अब धर्म समुच्चय में भी इसकी व्याख्या की गई है, और प्रथम धम्म चक्र इसमें इसमें जो स्कंद इत्यादियों को रोका नहीं गया, उनको इन बातों को वहाँ पर की गई है। और जब प्रज्ञापरमिता हृदय प्रज्ञापरमिता नामक धम्म चक्र उपदेश किया गया तो उसमें प्रथम धम्म चक्र में पुद्गल निरात्म नहीं है उसके बारे में बात की गई। उसके बाद दूसरी धम्म चक्र में धर्म निरात्म आदि की भी बातें कही गई। और जो जहाँ तक जहाँ बिंदु की बात की जाए या विषय की बात की जाए तो वो रूप इत्यादि होते थे। और शून्यता को अलग रखा जाए या फिर विषय को अलग रखता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसा कहा है रूप से शून्य, रूप से हट करके शून्य नहीं है, रूप ही शून्य है। तो इस बार जब ये व्याख्या की जाए तो 2 आर्य सत्यों के बारे में कहा गया। 2 आर्य सत्य जो हैं उनके वो अलग अलग हैं क्या, जैसे रूप से शून्य हटके नहीं है, रूप ही शून्य है, ये दोनों ही इनका स्वभाव एक होता है। ये जो शब्द है केवल रूप से ही नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे कि रूप को ढूंढने से नहीं मिलता, जब उसको ढूंढने को जाते हैं तो नहीं मिलते हैं। जैसे कि अर्हत या फिर नरक इत्यादि चीजें, जो भी बातें कहें, जो भी धर्म है उनको अगर देखा जाए, ढूंढा जाए तो देखने से नहीं मिलते हैं। लेकिन इस दुनिया के रूप में, भौतिक रूप से, ये प्रसिद्धि के रूप में तो देखने को मिलते हैं, सर्वव्याप्त तो होते हैं, हैं तो हैं, लेकिन जब उनको ढूंढा जाए, जब उनको ढूंढा जाए, उनकी व्याख्या की जाए तो देखने से नहीं मिलते हैं। और लेख से में भी कहा गया, चाहे टीशन में भी इसकी व्याख्या की जाती है। और लेख से तो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो किन इन जो भी धर्म है उनको अगर स्वतः आस्था से रखा जाए तो देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो व्याख्या माध्यमिक दर्शन के अनुसार की जाती है। तो उसके बाद जो ठंगे लेसे नामक ग्रंथ की रचना की गई और चावा टिक्षण में भी कहा गया है, जिसमें मूल्य माध्यमिक करिका का भी कड़िका है, उसकी व्याख्या की गई है कि अगर जिस तरह से जैसा का जैसा है उस तरह से अगर हम उसको मान लें तो हमारे चित्त पर बुरा प्रभाव डालती है, तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि नाम मात्र से उसकी व्याप्त है, केवल नाम मात्र के रूप में ही उसे धीरे धीरे ढूंढा जा सकता है। और गुम्बा रफसेल में भी लामा रिम्पोचे जी ने खुद व्याख्या की है कि तो कुछ विद्वानों के बीच में विवाद तो पैदा होता है, विभेद होते हैं, तो माध्यमिक दर्शन जो है वो चित्त के आधार पर होता है, वो बुद्धि के या प्रज्ञा के आधार पर निर्मित होता है, तो कोई श्रद्धा से या फिर विश्वास करने के लिए नहीं होता। जितना आपका आपकी बुद्धि तेज होती है अर्थात प्रज्ञा ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा आप उसको समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है मैंने शून्यता को जान लिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा ही मैं कहता हूँ कि शून्यता को प्राप्त करने वाला ही हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस तरह से अगर सोचें तो बहुत फ़ायदा होता है। हालांकि मैंने शून्यता को प्राप्त नहीं किया, शून्यता को के अंदर हमारे अंदर पैदा हो गया ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो इसी प्रकार से ये शून्यता की बात है। तो अपने आप में जुड़ता ही मैं शून्यता हूँ, शून्यता ही मैं है, बुद्धि ही शून्यता है, शून्य ही बुद्ध है। इस प्रकार अलग अलग विषय पर जुड़ना चाहिए, भवचक्र ही शून्यता है, शून्यता ही भवचक्र। इस तरह से अलग अलग विषय पर उसको जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अलग अलग उदाहरण को लेकर के शून्यता को देखना जोड़ना चाहिए। कोई भी धर्म हो जब ढूंढने उनको जाते हैं तो ढूंढने से नहीं मिलते हैं, तो कुछ नाम मात्र के हैं वो अपने से स्वयं से अस्तित्व में नहीं आते हैं। तो आखिर वो किस तरह से उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार सिद्ध होते हैं, तो इस प्रकार की बातें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इधर उधर कहीं भी देखें, इधर जहाँ भी हम देखें, तो सारी की सारी चीज़ें चाहे रूप शब्द जो भी हैं वो ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से अस्तित्व में हैं। तो उस समय सोचना चाहिए कि मैंने सोचा, मैं सोचता हूँ। जब उनको ढूंढने जाते हैं तो ढूंढने से नहीं मिलती हैं, तो जिस तरह से हैं, जिस तरह से देखे हैं, जिस तरह देखे जाते हैं उस तरह से नहीं होते हैं। इस प्रकार सोच विचार करना चाहिए। इस प्रकार के जब आप विचार करें, सोच विचार करेंगे, जब आदत पड़ जाएगी, केशव जी कहा है कि तो सके इसे की जो प्रवचन है उनको भी पढ़ना चाहिए। तो जितने भी प्रकार के हमारे काम धातु के धर्म हैं वो किस प्रकार से क्या ढूंढने से मिलते हैं, इनको देखना चाहिए। तो उसके साथ साथ हमें समत का अभ्यास भी करना चाहिए। अगर समत का अभ्यास होगा तो वो सारी सिर चीज़ स्पष्ट हो सकती हैं। तो इसके ऊपर हमारे जो शांति है उसके शांति या धैर्य का भी अभ्यास करने की कोशिश करना चाहिए। और इसमें जो प्रति समुत्पाद शून्यता है उसके बारे में सोचना चाहिए और सोचना और विचार बनाना चाहिए, या फिर इस तरह की प्रज्ञा बनाना चाहिए जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार का न होकर के थोड़ा हट करके है। तो मैं इस प्रकार का सोचता हूँ कि सब में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, और जब इस प्रकार की सोच रखेंगे तो हमारे जो टीचर शिक्षक है उनके प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी, वो भी निर्मल श्रद्धा उत्पन्न होगी। अगर आप सोचें कि अभी अगर इस समय जब ऐसी बातें होती हैं तब हमारे मन में उत्पन्न होता है कि अगर हम एक दिन में इस प्रकार की बातों को नहीं सोचेंगे या फिर विचार नहीं करेंगे तो ये जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर स्वभाव से ये सिद्ध ना होती तो बात अलग होती, स्वभाव से अगर सिद्ध होती तो ये बात अलग होती, लेकिन स्वभाव से सिद्ध नहीं हो तो उनको जानना चाहिए। तो रोज रोज इसके बारे में विचार करना चाहिए। जो कल्याण मित्र हैं, कल्याण मित्र के संबंध में ग्रंथ कहे गए, उनके बारे में कहा जाता है, तो हो सकता है कि मेरा मैं हो सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत हो, आप लोगों को बुरा लगे, तो आप उसको मत मानिए। हो सकता तो कुछ लोग जो अपने अच्छी तरह सोच विचार करते हैं, इस प्रकार सोच विचार करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के दर्शन में शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध के दर्शन को सीखने से क्या फ़ायदा है? तो सबसे महत्वपूर्ण आता है कि गते गते पार, गते पार सम गते बुद्धि सोहा। तो संवार्ग मार्ग से लेकर प्रयोग मार्ग आते थे चलते हुए बुद्धत्व को प्राप्ति करना होता है। तो जब तक हम प्रज्ञा पारमिता सूत्र को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हमारे अंदर जो मैं की भावना है या है आत्मा की भावना है, वो प्रबल बनी रहेगी, मजबूत बनी रहेगी। अगर आप पहले बोधि को जानना चाहिए। बोधि को जानने के बाद बोधि को किस प्रकार से प्राप्त करना है? अगर बोधि को नहीं जानते हैं और बोधचित्त को न जाने और इन किसी भी चीज़ को न जाने, तो फिर आप और कहें मैं बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूं, तो संभव नहीं है। तो सूत्र इत्यादि में जो चीज़ें बातें कहेंगे उनको अच्छी तरह सोचना चाहिए। जो हम बोधचित्त उत्पन्न करते हैं वो दूसरों के हित के लिए उत्पन्न करते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। जैसा तिब्बत का उदाहरण दें तो तिब्बत में दूसरे बुद्ध के रूप में नागार्जुन के को माना जाता है, और उनके सारे के ग्रंथ उपलब्ध हैं, चाहे अभिसमय अलंकार, और उसके अतिरिक्त और जो व्याख्या उन्होंने की, अभिसमय अलंकार की व्याख्या की हो या अन्य ग्रंथों की व्याख्या की हो, उसके अतिरिक्त बुद्धपाल्यता या फिर चतुशतक इत्यादि नामक ग्रंथ भी मौजूद हैं। तो दूसरी भाषा में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपकी अपनी भाषा में है, और हमारी भाषा में ये वचन हैं, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, भाग्यवान मानना चाहिए। तो मैं पहले बहुत हमेशा से कहता हूँ कि हमारा जो तिब्बती बौद्ध धर्म है नालंदा परंपरा से लिया गया है, तो यहाँ पर जितने भी अध्ययन करने वाले हैं, जो मठों में अध्ययन करने वाले लोग हैं, वो उनमें से आप लोग प्रमुख हैं, आप लोगों का अध्ययन करना चाहिए, आप लोग उसके परीक्षण करने वाले लोग आप लोग हैं, जो आप लोग 20-25 साल 30 साल तक अध्ययन करते हैं, तो आप उस इस अध्ययन के दौरान अपने तर्क के द्वारा उसको सिद्ध करते हैं। तो भगवान बुद्ध का दर्शन तो वास्तव में विशाल है, तो उसके बारे में और जब परीक्षण के बारे में अगर बात की जाए, तो गेलू परंपरा ज़्यादा गंभीर रूप से उसका परीक्षण करता, ज़्यादा डिबेट इत्यादि करते हैं। तो उनको अगर वास्तव में सार के बारे में देखेंगे, तो सैकड़ों वर्षों के पूर्व से ही इस व्यवस्था को बनाए रखे हैं, और खासकर मठों में इस परंपरा को रखे हुए हैं, और वहाँ पठन पाठन का कार्य चलता है। तो मैंने जैसा कल कहा था कि नालंदा परंपरा को धार कर करके अभी तक उसको रखे हुए हैं, तो आप लोगों ने रखे हुए हैं, तो अच्छी तरह से उसके अर्थ को जान करके और वास्तव में उस अर्थ क्या है, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे गुरु ने ऐसा कहा या भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, आप अपनी बुद्धि के अनुसार वो सही लग रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होशियार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, तो उनके समक्ष भी व्याख्या अच्छी तरह से करनी चाहिए, और इसलिए हम लोग तिब्बती होने के नाते तो तिब्बती परंपरा में भगवान बुद्ध के दर्शन को पूर्ण रूप से संयोजित करके रखे हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि बौद्ध धर्म पढ़ाने के लिए या बौद्ध धर्म जानने के लिए बुद्धिस्ट ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। जो प्रतिसमुत्पाद की बातें हैं, तो ऐसी चीज़ें जो बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी प्रज्ञाशील लोग हैं, उनके हित के लिए होती हैं। हम लोग शरण में रहते हुए काफ़ी दिक्कत परेशानी इत्यादि में तो है ही हैं, तो बहुत जो बहुत और शरणार्थी के रूप में बहुत सारे लोग नहीं हैं, पढ़ाई करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, और प्यार भी बड़े बन रहे हैं, पैसे भी बड़े, और इस तरह से बढ़ते जाएं और धीरे धीरे विकास होता जाए, और बाहर की चीज़ें हैं और बाहर की चीज़ें बढ़ती जाएं, मंदिर या फिर इस तरह चीज़ें बढ़ती जाएं, और फिर पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई चीज़ न बढ़ें, पढ़ाई लिखाई अगर आप अगर न बढ़े तो फिर अच्छी बात नहीं है। घर मकान बुद्ध विहार को बड़ा बनाएं, और पढ़ाई अगर अच्छी न हो सके तो फिर ये बेकार चीज़ें होती, बेकार होती हैं। तो काल चक्र के समय में मैंने कहा, तो आप लोगों ने सुना होगा, और फिर कुछ दिन पूर्व भी ये बात हुई, और यहाँ पर देंसा सोम हैं, तीन मठ जो महाविहार हैं उनके बिच्छु लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, और यहाँ पर भी और शिक्षक लोग भी आए हैं, आचार्य लोग भी आए हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से आप लोग मीटिंग करना चाहिए कि किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए। मेरे कुछ है जानकार हैं जो गेशे बन गए, तो वो लोग पहले जब भी इधर उधर जाते थे वो तर्क करते थे, तो आजकल जब डिबेट ख़त्म हो जाता है तो आजकल डिबेट ख़त्म होने वाले जब वापस आते हैं तो आधुनिक जो चीज़ें उनके बारे में बातें करते, पैसे के बारे में बात करना, या फिर जो बहुत सारी चीज़ें वस्तु उनके बारे में बातें करते हैं। तो बहुत आजकल जो हमारे मन में या जो विद्यार्थी उनके मन में परिवर्तन आया है, मन भटका हुआ है, ऐसे वो कहते हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, तो अब मैं आपको उसको रोक दूं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके बिहार की परंपरा रोक दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ये आप लोगों को सोचने की बात है, आप लोग कर सकते हैं। तो टाइम खराब हो, समय बर्बाद हो रहा है, या फिर व्यवस्था ख़राब हो रही, तो आप लोगों को परीक्षण करके देखना चाहिए। और उस समय और मैंने जैसे कहा कि जब सोच विचार भी हमारे एक संकुचित सोच विचार न होकर के बड़ी सोच विचार होना चाहिए, तो अपना गर्व घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं दलाई लामा ऐसे हूँ, और मैं भगवान बुद्ध के दर्शन को पकड़े हुए बहुत फैला रहा हूँ, ऐसा सोचें। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, और को अपने मठों में रह करके ड्रम या इत्यादि बजा के रहना, और सोचते हैं कि धर्म को पालन कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आकर के 50 वर्ष के आसपास हो गए, तो वहाँ पर आप लोग अध्ययन करना चाहिए। तो नमगेल रहता जो है उसको पहले, और वहाँ पर खासकर ये रीति रिवाज होते थे, उनको छोड़ कर के आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए। और अन्य जो स्कूल उन्होंने भी कहा कि आप पढ़ाई करें, और जो बिछड़ी बिहार है उसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं, और गेसेमा जो बिछड़ी गेसे भी बनी है, ऐसे ऐसे नितपन हैं। तो कुछ लोग ऐसे कहते गेसेमा नाम से गेसेमा अगर बन जाएगी ठीक होगा कि नहीं, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, भगवान बुद्ध ने जब बिछड़ी संघ बनाया तो फिर क्यों नहीं गेसेमा उत्पन्न हो सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो पढ़ाई करने की बात है, वो पढ़ाई करने का तरीका तो कोई भी कर सकते हैं। तो आजकल गेसेमा भी निकल रही हैं, तो भारत में पहुंचने का भारत में इतने वर्ष आने के बाद बहुत महत्वपूर्ण मानना चाहिए, और महत्वपूर्ण मान रहा हूँ कि इतना कार्य हुआ है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, तो हो सकता है आप लोग को बुरा लगे, ठीक रिम्पोचे जी यहाँ पर पाए हैं, यहाँ पर लद्दाख से पधारे हुए हैं, और लद्दाख में जब भोजन कर रहे थे उस समय रिम्पोचे वहाँ थे, लद्दाख के कुछ बड़े बड़े कार्यकर्ता अधिकारी लोग थे, तो उनसे एक मजाक के तौर में एक बात है, भगवान बुद्ध का दर्शन जो है जो दो 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 रूप दो रूप में है और दूसरे हथकर के नहीं है, वो भी बुद्धि के द्वारा उसको रखा जाए रखा जाता, या तो बुद्धि होना चाहिए या फिर सिद्धि की तरफ से प्राप्त करना चाहिए। तो हमारे कुछ दोस्त लोगों उन्होंने कहा कि हमारे लद्दाख में ना तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं ना तो सिद्धि का प्राप्त करते हैं, बस ड्रम इत्यादि बचाते रहते हैं कि दंग दंग सर कैसे करते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ लद्दाख में नहीं है, वो तीसरी चीज़ अटकर के है। तो वहाँ पर ना तो भगवान बुद्ध के जो शब्द हैं उनको मानने वाले भी ज़्यादा नहीं हैं, और जो हमारे तीन प्रकार की शिक्षा है सील समाधि प्रज्ञा, इनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं हैं, इनको जानने वाले ज़्यादा नहीं हैं। और ज़्यादातर जो हमारे तंत्र के जो अभ्यास करते हैं और जो ड्रम इत्यादि ढोल इत्यादि को बुद्ध और ऐसा लगता है कि ये बजाने से कि जो हमारे जो दानदाता हैं, दानदाता लोग यहाँ आओ दानदाता को साथ बुलाते हैं ऐसा लगता है। तो वास्तव में बुद्ध विहार इत्यादि से महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध के जो दर्शन हैं उनको ग्रहण करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पर जो तीन मठ हैं देंसा सुमे इसको पठन पाठन तो है, यहाँ और ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहिए। तो अभी तक 50 वर्षों से आप लोग कह रहे हैं दलाई लामा हैं, तो मेरा भी उम्र ढल रहा है, तो मैं काफ़ी बार यहाँ आया हूँ। तो इस प्रकार के जो बातें जो प्रति समझ जो निर्भरता की बातें हैं ये दूसरे पर चलती हैं। तो आप लोगों को और ज़्यादा उत्साह पैदा करना चाहिए। तो ये जो संबंध है वो कोई नित्य नहीं है, एक दिन तो पिछड़ने का समय आता है। जैसा कि हम लोग शरणार्थी के रूप में आए, लगभग 50-55 वर्ष हो चुके हैं। आप लोग का एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो कब है? 25 तारीख को एक तो भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? जब खाते हैं साथ आप बैठते हैं तो उस समय भी आपको बातचीत करना चाहिए। और तो केवल मीटिंग के समय मीटिंग की जैसा नहीं करना चाहिए, बातचीत अच्छी तरह से करना चाहिए। और वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन की एक बार है स्वामी जी एक वहाँ पर पधारे थे, तो वहाँ पर मैं कई बार गया। और फिर पिछली बार अमेरिका में उनसे मुलाकात हुई। तो अगले साल भी अमेरिका में एक बार होगा। तो वहाँ पर मैंने कहा तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये ज़्यादातर सोने वाले सभा जैसी लग रही है, ज़्यादातर लोग सोते रहते हैं। तो ऐसा मैंने बोला तो एकदम लोग वो कुछ लोग ऐसा सोचने लगे कुछ मुझे करना चाहिए। दलाई लामा कह रहे हैं कि ये तो सोने वाला सभा है, ऐसा मैंने कहा। तो फिर उन्होंने कहा सोचा कि उठ कर कुछ करना चाहिए, नींद खोल के कुछ करना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी काम किया। तो यहाँ गांधीन में भी मैं कहता हूँ कि कभी कभी ऐसा कुछ एहसास होता है कि मीटिंग इत्यादि में कभी नींद ऐसे आए तो कहने का हमारा आलस्य जैसा या पूर्व कोई यहाँ पर परिणाम ना है तो अच्छी बात नहीं होता है। अगर ऐसे काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऐसा सोचे हाँ चलो ठीक है चलेगा, ऐसे सोच नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से उसका उस सभा का आयोजन करना चाहिए, बिना समय की बर्बादी किए अच्छी तरह से कार्य करना चाहिए। चाहे कोई नियम बनाने वाले हों या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के हों या फिर कोई भी हो, तो अच्छी तरह से करना चाहिए। बिल्कुल फॉर्मेलिटी ही नहीं करना चाहिए। अगर फिर बाद में सोचोगे तो तब तक तो देर हो चुकी होगी। तो कहाँ पर तो जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। जब भारत में मैं आया तो नेहरू से मैं कहा मैं भारत में रहूँगा। 1956 में जब आया था तो कहा मैं भारत में रहूँगा। फिर उसके बाद में नेहरू से कहा था तो उसके बाद में फिर वापस तिब्बत गया था। और वह चीनी इत्यादि अधिकारियों से भी मिला था। तो इसलिए हमें जो बुरी बातें उनके बारे में ज़रूर कहना चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो कार्य हैं उनके बारे में बताना चाहिए। तो आज भी तो जो बुरी बातें हैं तो किस प्रकार से समय की खराबी हो रही है, किस प्रकार से हमारे में कमी आ रही है, उनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। तो आजकल ज़्यादातर जो बोधिसत्व को प्राप्त करने की जगह पर ज़्यादातर पैसे के पीछे, डॉलर के पीछे भाग रहे हैं। आजकल ऐसा हो रहा है। अगर आप वास्तव में बोधिचित्त को प्राप्त कर रहे हैं और ट्रोलर भी चला रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसे हैं जो झूठ बोल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गलत कार्य कर रहे हैं। तो तिब्बत में ऐसा हो रहा है। तो ऐसे काम करने वालों का मतलब है कि उनका जो मन है, मन संतुष्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें त्याग करना चाहिए। हमारे अंदर बैराग्य की भावना उत्पन्न हो। बैराग्य की भावना तब तक नहीं होगी जब हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो 1960 की बात है, तो मेरे साथ में साथ की बात है। तो वही कह रहे हैं कि तो लमरी चैम्पो का जो अर्थ है वो उलट गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। इसका पहले ये होना चाहिए कि जान करके उसमें श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। तो अर्थ को उलट करके समझना चाहिए। तो आजकल हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, उसके अतिरिक्त और ज़्यादा उसको करना चाहिए। तो तिब्बत से आने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। जो भी लोग आए हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग तिब्बत से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हैं, अध्ययन करने के लिए आए हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन को संरक्षित करने आए हैं। उनके लिए बहुत 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 दयाल बहुत अच्छी बात है। जो पूर्व में लोग आए थे तो आजकल के समय में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ संबंध ठीक से नहीं बन रहे, उनके बारे में जानना चाहिए। तो गोमांग या ग्यूमे या अलग अलग तो जब आप जैसे कि आप लोग जब गर्मियों की छुट्टी होती हैं तब उस समय आप लोग कुछ काम करते हैं तो और ज़्यादा करना चाहिए। जैसे जाया गुंजों के का समय है तो वहाँ पर कभी कभी आयोजन किया जाता है, कुछ समय के लिए आयोजन किया जाता है। उसके अतिरिक्त वो जो हमारे लड़का लड़कियाँ हैं उन समय जब डिबेट का समय हो उस तो उनके लिए भी एक समय बनाना चाहिए कि उनको भी डिबेट में ला करके तर्क जहाँ अभ्यास होता है तो 2-3 हफ्ते तक, 1 महीने तक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए। और बच्चियों के साथ में इनके साथ में लाओगे तो बहुत अच्छा हो सकता। कोई बुराई या ऐसा तो इसमें नहीं है। तो जो लोग बच्चे लोग हैं उनको अंदर भी आगत आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों में बच्चे लोग भी इस तर्क शास्त्र के बारे में, इस विद्या के बारे में, डिबेट के बारे में काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। तो इसलिए जो आपके तीन जो आप लोग देंसा सोम से हैं, तो आप लोग सोचना चाहिए सर्वहित के लिए कार्य करें। तो ऐसा मत सोचना चाहिए कि यहाँ पर तो ऐसा ही बात नहीं है कि यहाँ पर लड़के दूसरे जो पढ़ना चाहते हैं जो विष्णु नहीं वो नहीं आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आना तो उनको भी आने देना चाहिए, उससे उनको थोड़ा जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा गलत काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं शायद कुछ हमारी गलती हो रही है। तो 100% न कर पाएं लेकिन फिर भी 70% तो जैसा कि 70% तो उसको लागू कर ही सकें, ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग खाना खाते समय भी इसकी मीटिंग इत्यादि करने चाहिए। तो आज से शुरुआत उसको करना चाहिए, खाते समय भी उसका बातचीत करना चाहिए, केशी लोग या फिर खेमपुर साथ बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए। तो एक बार कुकचोला खाम के एक लोग आए, एक लोग कार्य करने वाले थे, कार्यकर्ता थे, तो वो साफ सफाई करने के लिए जब आ रहे थे, बुधवार सफाई कर रहे आ रहे थे, तो कुछ ठीक नहीं उनके साथ हुआ, तो साधु गुस्सा हो गए और वो देवता को उन्होंने देखे। तो उन्होंने कहा जो कुछ में साथ बिहार में आग इत्यादि लग गई होती, तो उन्होंने कहा कि जो भगवान है चाहे आग लगे तब भी आपका चेहरा खुश होता है, चाहे अच्छा हो तब भी चेहरा खुश दिखाई देता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसी बातों को देखना चाहिए कि हमेशा एक जैसा कैसे रह सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारे अभी घुटनों में दर्द होता है तो और बाकी का दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में भी चले पर मैं जाऊंगा तो जैसे क्या भविष्य में भी मैं वैसे भविष्य में भी मेरे पैर अगर ठीक नहीं तभी व्हील चेयर जाकर फिर भी मैं बोलूँगा। तो इस समय जो मेरा जीवन है वो भी पतन है, वो तो हमारा उस तरह से चल रहा है। तो आप लोगों को जो नए योग के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, आप लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जब मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ उसके बाद उस समय जब मृत्यु के समय आएगा उस समय चिंता करने की बात नहीं है, उस समय आप लोग अपनी जिम्मेदारी करना चाहिए। तो आप लोग 300 गया दीर्घ आयु इत्यादि की कामना तो करते, उससे हो क्या सकता, कुछ नहीं हो सकता है। जो वास्तव में है वो होगा ही। तो ये मैं कहता हूँ कि आप लोग जो मंडल इत्यादि पर कहते हैं कि हजारों वर्ष तक रही है, तो ये बात आप लोग जैसे प्रार्थना कर रहे हो, आप भी जानते हैं कि हम 1000 वर्षों साल तक नहीं रह सकते हैं, और मैं भी जानता हूँ नहीं रह सकते। ये तो एकदम फालतू का काम है, ये तो बेफालतू का काम है, अंधविश्वास जैसा काम हो रहा है। तो ये भगवान बुद्ध का जो वास्तव में धर्म है वो तो सत्य पर आधारित है। तो इस प्रकार के कार्य करने का मतलब वास्तव में भगवान बुद्ध के दर्शन को नहीं समझ पा रहे हो। तो अगर ज़्यादा मेरी बात हो गई, मैंने ज़्यादा कह दिया हो, तो उसके लिए माफ़ चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लग रहा हो कि बेअर्थ की बातें हैं, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। यहाँ से सामान लमरीम का पाठ शुरू हो रहा है। तो इधर तो ये जो बातें कह रहा हूँ मैं वास्तव में सत्य बातें हैं, कोई गलत बात नहीं है। तो तिब्बत से कुछ लोग जो पहले आए थे और कुछ लोग उनसे मिले तो उनका तिब्बत में मेग्यो नाम का एक विद्यालय है। तो मेग्यो जैसे इसमें दर्शन या फिर नैलाना इत्यादि की बातें यहाँ से शुरू होती हैं तो उसके जैसे ही बातें हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें तो शून्यता के दर्शन होते हैं और प्रति समुद्पाद की बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो उससे हमारे जो सोच विचार है वो ज़्यादा साफ हो जाता है। तो अगर सोचें कि शरीर धुलने से और उससे अगर हमारे पाप या नष्ट हो जाए तो ये नहीं हो सकते हैं, तो उनको कहा जा रहा है लेकिन उससे हो नहीं सकता। वास्तव में हमारे शून्यता या प्रति समुत्पाद के सिद्धांत से ही हमारे क्लेश इत्यादि नष्ट हो सकते हैं। तो अगर मानते रहें और कि इससे हमारा सारी चीज़ हो जाएगा तो उसे संभव नहीं है। तो उसमें जो जिनका नहलाने का स्थान है वहाँ पर चारों तरफ जो जिनका कोई नंबर नहीं उस प्रकार से सिंहासन इत्यादि उसमें रखे हुए हैं और उनका उस घर का जो नहाने का जगह स्नान करने जगह काफ़ी सुगंधित ऐसे है। तो जो नहना स्नानागार कुछ धर्मशाला में कुछ तिब्बत से लोग आए थे तो उसमें कुछ बुजुर्ग लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि सारे के सारे लोग को जेल में डाल दिया। ऐसा उन्होंने कहा कि सबको अगर जेल में डाल दिया तो फिर आप लोग यहाँ कैसे आ गए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसमें जा रहे सारे के सारे सत्व, तो सारे साथ सत्व नाम तो आ सकता, तो ऐसा नाम शब्द के रूप में तो आ सकता है, ऐसा हो ऐसा संभव नहीं होता है। तो जितने भी बुरी गंदगी वो सारी नष्ट हो रही है ऐसा मानना चाहिए। और हमारे शरीर के जितने प्रकार के भी बुराइयां हैं गंदगियां वो सारी साफ हो रही हैं। और पांचवा आता है यहाँ पर कि हमारे जो बुरे कर्म है उनको नष्ट करना, उनका अनुमोदन करना। तो सबसे पहले तीन बार यहाँ पर प्रणाम किया जाता है, भगवान बुद्ध को प्रणाम किया जाता है, जितने भी बुद्ध हुए हैं तो जितने प्रकार के बुद्ध हैं उनके सबका नाम लेकर के प्रणाम किया जाता है। और उनके जितने प्रकार के ज्ञान हैं या उनके भगवान बुद्ध के ज्ञान हैं उनके और उनके नाम हैं उनको नाम लेकर के किया जाता है। तो उससे अगर नाम लेते हैं उनका प्रणाम करते हैं तो हमारे अनंत कल्पों के जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। हालांकि काफ़ी गौर है इसको ऐसे समझा नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी मार्ग और जो फल है उनको जान करके अगर करते हैं तो ज़्यादा समझ सकते हैं, तो वो देख तो हो सकता है। तो फिर उसके बाद फिर प्रणाम करना चाहिए और उससे सरगमन बोधचित्त और 35 प्रकार के तोंसा नाम होते हैं, उनको करना चाहिए। और उसमें बोधचित्त इत्यादि का बारे में अभ्यास करना चाहिए। और हम लोग भी अपने चित्त में सबसे पहले जो शून्यता का सिद्धांत उसको साथ रखते हुए और शून्यता का सिद्धांत को मन में रखते हुए अगर बुद्ध चित्त इत्यादि का लाभ उत्पाद करें तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। सारी बुद्ध जितने भी उनके सभी जितने भी दर्शन उनके लिए और ज्ञान सभी लोगों के लिए और 10 दशाओं में जितने भी भगवान हैं उनको सभी को नमन करना चाहिए। और आकाश और पाताल की तरफ जितने भी लोग हैं उन सब में जहाँ भी व्याप्त हैं उन सभी को प्रणाम करना चाहिए। तो उसमें श्रद्धा के बारे में तो प्रज्ञा के विश्वास इत्यादि के विश्वास तो उसमें खासकर हमें अरहत पद कैसे प्राप्त किया जाए उसका श्रद्धा रखने चाहिए। तो चारों तरफ जितने भी सत्व हैं उनके उन जितने भी सत्व हैं वो जो जो हमारे तीन शरीर वचन और मन तीन प्रकार के हमारे जो दरवाजे होते हैं उससे प्रणाम करते ऐसा माने। और दही सुंजों से शुरू करते हुए रूप से शुरू करते हुए हमारे जो शरीर और चित्त है वहाँ तक विचार करना चाहिए। अगर इसके बारे में अच्छे से सोच समझ अगर हमारा ज्ञान अच्छा हो जाए तो एक तो जब चढ़ावा करें तो पुष्प इत्यादि का चढ़ावा करना चाहिए। और पुष्प इत्यादि और धूप अगरबत्ती इत्यादि का आदि का वहाँ पर चढ़ावा करना चाहिए। तो जिस प्रकार से परम पावन जी पढ़ रहे हैं उस प्रकार से इतनी तेज़ी से नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि ये टेक्स्ट हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो फिर भी जो भी उसके सार के रूप में आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो अपने जिलों अपने सभी लोगों अपने अपने सबसे पहले अगर चढ़ावा है तो वो तो चढ़ावा के रूप में अगर माना जाए तो हमारा जो सिद्धि का चढ़ावा सिद्ध अगर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनका चढ़ावा करना चाहिए तो अच्छी बात है। और अपने गुरु के जो तीन प्रकार के जो गुण होते हैं तो अगर गुरु में तीन प्रकार के गुण होते हैं तो अपने में भी उन तीन गुणों को उत्पन्न करना चाहिए, प्यार का, ज्ञान का और जो मैत्री है। तो उनके अपने अंदर भी ज्ञान को पैदा करने की कोशिश करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छा तो दान, सबसे अच्छा तो उपहार तो यही हो सकता है कि आप उसी जो जैसा आपके गुरु से के अनुसार बन सकें और उसका अभ्यास कर सकें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वो सबसे पुण्य भी यही होगा। तो इसका अगर इस प्रकार से अगर चढ़ावा करें तो केवल शब्द का ही नहीं होगा, वास्तव में अनुभव से दिया गया एक उपहार या चढ़ावे के रूप में होगा, ऐसा करना चाहिए। जैसा सूत्र में भी कहा गया है कि जिस प्रकार से ये भवचक्र वाले लोग खुशी की प्राप्ति करना चाहते हैं उसी के अनुसार उपहार इत्यादि चढ़ावा देते हैं। तो बोध जो हमारे तीन रत्न हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ऐसा इस ग्रंथ में कहा जा रहा है। परम पावन जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एसी है उसको चला दो। तो इसमें जो पाप है, पाप देशना की बात कही जा रही है, तो हमारे शरीर मन और वचन तीन प्रकार से उसका संचय किया जा सकता है, पाप देशना की जा सकती है। तो जैसा कि अनंत समय से ही हमारे जो आत्मग्राह का चित्त हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तो अभी तक हम लोगों ने अनंत काल से लेकर अब तक हमारे शरीर मन वचन से तीन तरह से पाप का संचय किया है, तो उनका हमें पाप देशना करना चाहिए, पाप का जो हमने पाप की उनको उनका पश्चाताप करना चाहिए। तो जितने भी सत्व हैं वो अज्ञानता की वजह से दुख में पड़े हैं, क्लेश की वजह से दुख में पड़े रहते हैं, तो जितने भी दुख हैं तो उनका पश्चाताप करें तो अच्छा हो सकता है। तो उसमें हमारे कर्म विपाक या जो तीन प्रकार के हमारे फल होते हैं तो उन फलों को नष्ट करना चाहिए, जो कार्य की वजह से होते हैं, अभ्यास की वजह से फल प्राप्त होते हैं, और कर्म विपाक की वजह से जो फल की प्राप्ति होते हैं तो उनको नष्ट करने, जो बुरे फल प्राप्त होते हैं उनको नष्ट करना चाहिए। तो अगर इस समय में अगर हमारे अंदर पाप उत्पन्न हो जाए तो उसको भी नष्ट करने का विचार उत्पन्न करना चाहिए, और जो अच्छे आचरण के शब्द हैं उनको बार बार उच्चारण करना चाहिए। اور اس کے بعد جو دوسرے کے لیے خوشی ظاہر کرنا, یہاں پاٹھ ہوتا ہوا کہ دوسروں کے لیے ہمیں خوشی ظاہر کرنی چاہیے, چاہے وہ دوسرے اگر اچھا کار کرتے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, ان کا انمودن کرنا چاہیے. تو ناگارجن جمبے یانگ ناگارجن یا تھوم اتیاد سے لے کر کے جو بھی پرمپرا کے گرو لوگ ہوئے ہیں, انہوں نے سارے روز روز پرتی دن سبھی لوگوں کو ایک ہت کے لیے کرونا میتری اتیاد اتپن کیا ہے. اور اگلے جنم میں بھی مجھے اچھا پھل کی پراپتی ہو جائے ایسا وچار کرنا چاہیے. اور خود محنت کرنا ہے ایسا وچار کرنا چاہیے. اور میں بھی گرو کی کرپا کی وجہ سے بھگوان بدھ کے درشن کو دیکھنے میں سکشم ہوا ہوں, ایسا وچار کرنا چاہیے. اور بنا گھمنڈ کر کے دوسرے کا انمودن کرنا چاہیے. اور پھر اور دھرم کا اپدیش دیں اس کے لیے انمودن کرنا آہوان کرنا, اس کے بارے میں پاٹھ ہوتا ہوا کہ سبھی لوگوں کے ہت کے لیے پنہ دھرم چکر کا اپدیش دیتے رہیں تب تک آپ اس پو چکر اس ہم لوگوں کے ساتھ میں بنے رہیں, ایسا ہے اس میں کہا جا رہا ہے. اور جو یہاں پر جو ستو نہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے ان کو دونوں ساتھ میں لینا چاہیے, اور ان کو اجھانتا سے نکالنے کے لیے آپ دھرم کا اپدیش دیں. تو میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں تو آدھا تو مندا گیا آدھا تو ستیہ ہے, تو کبھی ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اگر دھرم اپدیش دیجیے دھرم اپدیش دیجیے ایسا کہتے ہیں دھرم اپدیش دیجیے بار بار کہتے ہیں تو اگر ابھی پھر بھی کہیں پھر بھی اگر کہیں ہے بھگوان آپ ہمیں دھرم اپدیش دیجیے تو بھگوان بدھ ساتھ یہی کہیں گے کہ ابھی تو بھگوان بدھ نے ابھی تک میں نے آپ کو اتنا دھرم اپدیش دے دیا ہے, 84 دھرم اسکند آپ کی بھاشا میں یہاں ہیں ان کو پڑھ نہیں رہے ہو, دوبارہ سے ان کو ہم دھرم اپدیش دوں تو اس کی ضرورت نہیں ہے, ایسا کیا بات ہے جو دوبارہ سے اپدیش دوں. تو پہلے جو اپدیش دیے ان کو آپ کو پڑھنا چاہیے, تو اس کو آپ چاہے آدھا مذاق میں سمجھیں آدھا ستتا کے روپ میں دیکھنا چاہیے. جو بار بار دھرم چکر اپدیش دینے کے لیے آہوان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے ہمارے پاس دھرم اپدیش ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو سوتر و شاستر جو تو 5 بجے سو میں اوپر گیا چھت پر گیا وہاں پر کانگر ٹینگر, تو اس نے پوچھا میں نے ان سے پوچھا اس میں کانگر تینگر رکھا ہے ان کو کون پڑھتا ہے, بھوت پڑھتے ہیں کیا؟ تو اوپر رکھے ہیں وہ, تو وہ کیوں رکھ دیا, وہ پڑھنے کے لیے رکھے گئے ہیں کیا؟ گیند توپوں کی ایک انہوں نے مجھ سے کہا दिकांगिर और तेंगिर जो सूत्र और शास्त्र है तो वहाँ पर रखे हैं, तो वो काफ़ी उसको पढ़ते थे। रोज पूर्ण का मैं पढ़ाई करता हूँ, तो ऐसे कुछ उधार देखने में मिलते हैं, तो बाकी ये उधार के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ जो हैं वो जेरिम्पोचे ने उन्होंने दिए हैं या ग्रंथ किए हैं तो उनको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, और बहुत उसके अतिरिक्त भारतीय विद्वानों के द्वारा दर्शन दिए गए उनको पढ़ने के लिए हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और उसमें भी बहुत सारे पढ़ने के लिए ग्रंथ दिए गए हैं, उनको सुशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, उनको एक किताब के रूप में अध्ययन करने के पुस्तक के रूप में समझकर पढ़ना चाहिए। उसके बाद पर निर्वाण को प्राप्त न करना, पर निर्वाण में मत जाइए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए ऐसा आह्वान करते हुए, क्योंकि अगर निर्वाण को प्राप्त कर जाएंगे तो हम लोगों के बीच में धर्म उपदेश देने के लिए नहीं रहेंगे, तो किया जा रहा है। उसका परिणाम ना परिणामना के बारे में जो हमारे पांच जो छह प्रकार की पहले जो उनके भाग के बारे में बताए गए हैं, तो तीनों कालों के समय में उनकी परिणामना करना चाहिए। कि जितने भी सत्य हैं उनके दुख नष्ट हो जाएं ऐसी भावना करनी चाहिए। और अपने खुशी दिल से सुखी दिल से दूसरों के प्रणाम करना चाहिए, और छठवां मंडल अर्पण करने की जरूरत की आवश्यकता होती है। तो मंडल में भी उसके किस चीज़ का बना है, उसका रूप क्या है, उसकी लंबाई क्या है, या फिर उसका जो किस तरह से बनाया है, तो इनके बारे में व्याख्या की जा रही है। तो मंडल के विशेषता का किस प्रकार से बना जाता है, दाएं तरफ क्या रखा जाता है, बाएं तरफ क्या रखा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। जिसमें कि पर्वत इत्यादि रखे जाते हैं और उनके चारों तरफ बीच में पर्वत और पर्वत इत्यादि होते हैं, और मध्य में रिंपोछे या कोई रत्न के रूप में चार रत्न रखे जाते हैं। और 10,000 एक साथ 1,00,000 के आसपास जो योजन होते हैं वहाँ पर, तो इनकी विशेषताओं के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि मंडल में जब आप मंडल को देखें तो वहाँ मंडल को देखने से पता लग सकता है कि कहाँ पर क्या चीज़ रखे गए हैं, तो इष्ट देव ऐसे या कितने प्रकार के दरवाजे होते हैं। और जो मंडल है उसमें जो हमारी पृथ्वी है उसे तीन भागों के रूप में दिखाया गया है, और उसका नीला रंग है, तो पहले चार प्रकार के जो द्वीप हैं उनको रखा जाता है। और छह प्रकार की प्रज्ञा पारमिता है, उनका अभ्यास करना चाहिए। और उनसे क्या फायदा होता है उनको याद करना चाहिए। और फिर हमारे श्री प्रमुख गुरु रिम्पोछे या हमारे जो गुरु हैं, और उनको अपने सर के ऊपर रखें ऐसा मानना चाहिए। और उनकी विशेषताएं हैं, उनकी जो कृपा हमारे ऊपर रही उनको याद करना चाहिए। और उनके तीन प्रकार के शरीर के और उनके चित्त के और ज्ञान, उनको हमारे अंदर प्रवेश हो जाए, उनको हम जान जाए, ऐसा विचार करना चाहिए। वो साक्या सिंह इत्यादि अर्थात भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए तो बुद्ध या उनके अतिरिक्त जो उनके समकालीन बोधिसत्व या फिर अर्हत लोग हुए हैं उनको क्रम से प्रणाम किया जा रहा है। उसके तक जमयांग और फिर नागार्जुन इत्यादि चंद्र कीर्ति आदि को नमन। और जितने भी कल्याण मित्र हैं उनको एक भगवान के रूप में बुद्ध के समान देखना चाहिए और उनको प्रणाम इत्यादि करना चाहिए। और उसके बाद बाहरी और आंतरिक जो भी हमारे बाधाएं हैं या फिर परेशानी उनको नष्ट करने के बारे में यहाँ पाठ हो रहा है। तो जो जयरम्पोछे के जो शिष्य हैं और हम लोग जो जयरम्पोछे के शिष्य हैं तो उस समय लमचो उस समय अगर अभ्यास करते हैं या और उसका पाठ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि शून्यता के बारे में विस्तार से समझाया गया है। क्योंकि बोध चित्त का अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर बैराग का अभ्यास करेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले बैराग का अभ्यास करना जरूरी होता है। तो उसके बाद बोध चित्त का अभ्यास, शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी जो शक्ति की बात है वो ज़्यादा होती है। जैसा कि उसमें कहा गया, केवल नाम मात्र से सिद्ध किया गया है। तो जैसा इस ग्रंथ में कहा जा रहा, दावा ठपा जो हमारे चंद्र कीर्ति हैं उनके अनुसार ही कहा जा रहा, उनके शब्द जैसा ही लग रहा है कि ऐसे ही कहा गया हो। क्योंकि जो हरिभद्रा का जो व्याख्या है तो उनकी व्याख्या चंद्र कीर्ति के शब्दों के समान ही है। तो उस लामा दोर्जे ग्यात्सो सांग, उनके इत्याद के लिए हमें प्रणाम ना करना चाहिए। उसके बाद जो समूह को इकट्ठा करना, समूह का यहाँ अर्थ है जो हमारे संवार हैं उनको इकट्ठा करना। यहाँ पर अपने तरफ से गुरु के लिए प्रमुख माना जा रहा है। तो जिस पर और स्वयं की जहाँ पर अपने तरफ से दूसरे गुरु की तरफ से बात अगर किया तो तिब्बत में ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो दूसरों के साथ साथ हमें अच्छा संबंध रखना चाहिए इससे, क्योंकि ये धर्म के हित के लिए अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर धर्म के क्षेत्र में लेकर के फिर भी अगर आप तो उसके लिए अगर आप कुछ पैसा इत्यादि जुटाने की कोशिश करें तो अच्छी बात नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता काग्यू परंपरा का गैलुक परंपरा की पिटाई इत्यादि करता है, या फिर क्योंकि एक दूसरे की पिटाई करते हैं, तो ये बातें अच्छी बात नहीं होती हैं। क्योंकि हम लोग तो नालंदा परंपरा के हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे को मानना चाहिए, एक दूसरे के संबंध अच्छा बनाना चाहिए, ना कि अंतर पैदा करना चाहिए। मैं बहुत सारे धर्मों के लोगों को जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से कहता हूँ मैं बहुत धर्म को फैलाने की बात नहीं करता हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी तरह से आप लोगों के साथ व्यवहार करिए, लोगों को लाभ मिले ऐसा कार्य करिए। क्योंकि कोई भी धर्म हो वो सभी लोगों का यही चाहत होती है कि दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो मैं सभी लोगों को यही कहता हूँ। तो फिर भी तिब्बती के अंदर देखा जाए तो वो लोग आपस में सोचते हैं कि मैं गैलू हूँ, मैं परंपरा हूँ, मैं शाक्य निमा हूँ। तो इस प्रकार की अगर सोचें तो कोई बात नहीं है। तो हमारी ये सोच है उसको संकुचित नहीं बनाना चाहिए, अपनी सोच को थोड़ा व्याप्त बनाने की ज़रूरत है। तो पहले इस तरह की बातें कभी कभी हुआ करती थी, तो आजकल भी तो मैं कुंखे लामा जया से उनके ये ग्रंथ को मैंने देखा है। तो उनके ग्रंथों को जब देखा तो उसमें वाले उस उनकी जो कमेंट्री है उनकी टीका है वो काफ़ी 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 विस्तृत रूप से की उन्होंने उसमें की विस्तृत रूप से दिया। तो उन्होंने शेख उसने मैंने जब देखा तो कहा कि शेख यू प्रमुख रूप से उसमें किया है, लेकिन दूसरी चीज़ नहीं देखने को मिलती हैं। और जिग्वे वांचों के जब ग्रंथों को देखते हैं तो उनके बारे में जो प्रकाश के बारे में का चित्त के प्रकाश के बारे में जो बात की जाती है, ये तंत्र की बातें होती हैं, तो उनके दूसरे के ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। तो जैसे तो खाग्यू परंपरा में भी ऐसा कहा जाता है कि ये अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ऐसी बातें हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो अभ्यास तो कुछ नहीं करते हैं, तो अलग अलग अपनी परंपरा का टोपी पहनते हैं, ड्रेकू काग्यू पालोला ड्रुपा काग्यू अपना अपना परंपरा का अलग अलग प्रकार का टोपी पहनते हैं, लेकिन अभ्यास कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं। जहाँ तक विदेशियों की बातें की जाए तो उनको बेचारों को ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो वो लोग तो उनको लोग लाल टोपी पीली टोपी या फिर अलग अलग प्रकार के टोपी पहनते हैं, तो उनको तो इतनी जानकारी भी नहीं है। अमेरिका में कालचक्र के समय मैंने कहा शायद 1900 उस समय सोपालाल के वहाँ पर उन्होंने उसका अभ्यास का, तो मैंने उनसे कहा कि भगवान बुद्ध ने कभी टोपी नहीं पहनी थी और तो मैं भी इस टोपी को नहीं पहनूंगा, ऐसा मैंने कहा इस मजाक के तौर पर कहा कि उन्होंने नहीं पहना तो मैं फिर क्यों पहनूं, क्योंकि विनय के अनुसार कोई टोपी या इत्यादि नहीं पहना जाता तो मैं भी इसको क्यों पहनूं। तो रेशों के एक उसमें उसका जब नाटक किया जाता तो उसमें भी टोपी इत्यादि पहन के व्याख्या की जाती है, तो एक अलग अलग व्याख्या करने तो कुछ लोग बड़े टोपी पहनते हैं, तो इसका परंपरा जी मजाक के तौर पर कह रहे हैं, उसका ये एक तरह का दिखावा करते हैं कि वो धर्म को ज़्यादा एक ग्रहण करने वाला था, धर्म को धार करके धर्म को ले जाने वाले ऐसे हैं ऐसा मानते हैं। तो सीधे हाथ पे सीधे तरफ जंपे यहाँ तो इसके अतिरिक्त गेलुक पे के जितने भी लामा हैं वो सारे लोग सावे हुए हैं। तो यहाँ पर कि किस प्रकार से गुरुओं को अलग उनके स्थान दिए जा रहे हैं उनके बारे में व्याख्या की जा रही है। उसके बाद मंडल जैसे भूमि इत्यादि को का जो मंडल है उसका अर्पण किया जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है कि जितने प्रकार के मेरे शरण हैं जो भिक्षु शरण इत्यादि हैं वो उनके उन वो लोग हमें जो सुख का मार्ग उस पर ले जाएं। तो बोधचित्त और शून्यता का अगर अगर विचार करेंगे तो ये जो हमें शरण देने वाले खासकर हमारे गुरु होते हैं, इसमें कहा गया त्रिरत्न को प्रणाम किया जाता है, तो ये तभी संभव हो सकता है जब हम अच्छी तरह से हमारे जो शरण का स्थान उसको प्राप्त कर सकें। तो आज के इस जीवन में हमारे अंदर जो मार्ग का जो ज्ञान है उस पर उत्पन्न होना मुश्किल है, इसलिए हमारे गुरु से प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर के ही या उनके अनुसार बताए गए रास्ते के अनुसार ही ये संभव हो सकता है। तो जो मार्ग गंभीर मार्ग है उसके बारे में व्याख्या, फिर अगली बार जो शिष्य जो गुरु लोग हैं, अब अगली बार लमडो लहजांग नामक ग्रंथ का पाठ होता हुआ, ये टीचिंग जो है लमरिम जे चंबा को, लमरिम चंबा के बहुत सारे टीचकों को इसमें जोड़ता है। अतिसत दीपांकर इत्यादि की जो टीचिंग है उनको यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। तो पांच ग्रंथ जो हैं, तो इन पांचों ग्रंथों को अच्छी तरह से अगर पढ़ते हैं तो हमारे जो सिद्धांत जो सोच विचार है तो उसमें विचार सोच विचार अच्छा होगा, परिवर्तन हो सकता है, ऐसा कहावत है, ऐसा कहा जाता है, ये बातें सत्य हैं। जे रिम्पोचे लमरिम जो है बहुत सारी चीजें उसमें देखने को विशाल रूप से देखने को मिलती हैं, और कदम्पा जो पास्ट में जो हो चुके हैं या भूतकाल में हुए उनके दर्शन और जे रिम्पोचे से बहुत सारी परंपराएं शुरू हुई, लमरिम की बहुत सारी परंपराएं शुरू हुई, और उसमें से खासकर जो आठ प्रमुख टीचिंग देखे जाते हैं।
Thank you.
तो उसके बाद जे लोसांग छोपेल से प्राप्ति किया, उसके बाद उनके जो गुरु थुपते हैं रबगे, तो उनकी किस प्रकार से उन्होंने गुरु से दीक्षा या प्राप्त की है, उनके बारे में यहाँ पर पाठ हो रहा है। कि एक जो गुरु परंपरा रही है, एक गुरु से लेकर के आगे तक किस 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 गुरु को क्या क्या जो दीक्षा दी है या जो शिक्षा दी, उनके बारे में यहाँ पर पाठ हो रहा है। जैसे कि लोजांग केन्सुन ने अपने टीचर प्यूतोंग ग्यात्सो को दिया, तो इनमें खासकर इनकी परंपराओं, अभी तक जितने भी गुरु हुए हैं उनकी परंपराओं के बारे में बात चल रही है। जो जो लीनेज की बात की जाए कि किस गुरु ने किस अपने शिष्य को इस ज्ञान को दिया, फिर अगले शिष्य को, या मौखिक तरीके से इनको प्रवचन देते गए, तो शरीर और शरीर और जो मंडल के तीन दो प्रकार से उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। तो बाकी की सारी चीज़ें देख ली, लेकिन जो लाल वस्त्र इत्यादि पहने थे वो शायद देखने को नहीं मिलता।
Thank you.
फिर उसके बाद लोसन जिम्पा ने अपने जो परंपरा है अपने भाई केजान तेंजिन को दिया, और केजान तेंजिन जो है वो सूत्रा और तंत्रा के दोनों के प्रमुख बन गए थे, काफ़ी विद्वान बन गए थे। जब वो टीचिंग देते थे और तो कहा जाता है कि और चारों तरफ एक प्रकाश के रूप में फैल जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वो टीचिंग देते थे, प्रवचन देते थे, तो उनके आँखों से सफ़ेद प्रकाश शिष्यों में प्रवेश हो जाता था, और जब टीचिंग ख़त्म होती थी उस समय और उसकी वापस उसकी आँखों में आ जाता था। ऐसा लोगों ने बहुत बार कहा। तो इसके बाद जो दमगा है अर्थात उपदेश है वो जो श्रद्धालु लोग हैं उसमें उत्पन्न होने के लिए धर्म का उपदेश देना। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के का दर्शन जो कि देवता या फिर जो मनुष्य हैं उनके लिए एक तरह के अमृत के रूप में बुद्धत्व की प्राप्ति हो सके। यहाँ पर बोधपत प्रदीप से कहा जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध के मत जो सिद्धांत दर्शन है उनका अर्थ निम्न प्रकार से है। तो ऐसी शिक्षा जो कि बिना किसी क्लेश पैदा किए दी गई हो, जो कि मनुष्य और सभी के लिए हो, और मनुष्य और देवता इत्यादि के लिए एक अमृत के समान होनी चाहिए। तो इसके बाद जो बोधचित्त महायान के बोधचित्त है, उनकी जो मार्ग है उसको बारे में पाठ होता हुआ, तो इसमें जो तीन प्रकार के मार्ग हैं उनके बारे में है। मुझे भी कुछ अनुभव हुआ, तो उस समय खुन्नू लामा रिम्पोछे जी थे। एक बार एक बुजुर्ग पुरुष थे, तो खुन्नू से यहाँ पर धर्मशाला आए, तो उन्होंने कहा सेमठी जो है ग्रंथ नाम वो हमको दीजिए। और माँ मुद्रा की सेमठी इत्यादि ग्रंथ है, उन्होंने कहा उसका मुझे प्रवचन दिए। तो उस समय मैंने खुद नहीं सीखा था, तो मैंने उनसे कहा मुझे नहीं आता, मुझे पता नहीं है। तो उस समय खुन्नू रिम्पोछे वाराणसी या दुर्जे या फिर बोधगया में थे, तो वहाँ पर जाए, तो वहाँ उनसे आप जाकर के सीखे तो अच्छा हो सकता है। तो उस समय मुझे काफ़ी दुख हुआ, वो खासकर मुझसे मिलने आए थे और मुझसे कहा सिमडी को पढ़ाइए, और मैं भी नहीं जानता था, तो उससे भी तो उस समय उसका सिद्ध तो उसका हित नहीं कर सका, कि सभी लोगों का हित करना चाहिए ऐसा मैंने सोचा कि उसका भी मैं हित नहीं कर सका। उस समय ठीक ने मुझे एहतियात लग गई हो और बहुत सारे गुरु लोगों से और उनसे अंतर न करके, और उनसे बार बार में इनसे जो ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त किया। जब कोई व्यक्ति ऐसा आए जो धर्म को सुनना चाहता हो, और उस तो उस समय कहा जाए कि मैं केवल गैलुक परंपरा को ही जानता हूँ, दूसरी परंपरा नहीं जानता हूँ, तो ये अर्थ सिद्ध नहीं होता है। तो उस समय ये बात होती है कि अंतर पैदा नहीं करना चाहिए कि मैं इस परंपरा का हूँ, दूसरी परंपरा को नहीं जानता हूँ, तो दूसरी परंपरा को जानना चाहिए। तो दूसरे लोगों के परंपराओं को जानना भी बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ग्वाया समाज के बारे में तीन प्रकार के जो विभेद किए जाते हैं उस, तो उनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी समय महामुद्रा के जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो महामुद्रा में पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है, और ग्वाय समाज के समय जो व्याख्या की गई है उनको साथ साथ जोड़ करके देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात होती है। ये वाकई सत्य बात होती है। तो पलदेन ईशे तो वो शायद एक समय कुंभ में चढ़ने के जब पढ़ाते समय तो पंचन के अगर होते वो, तो वो शायद महंगा को पसंद न करते, तो आपको अब चाहिए कि जो ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है। और जो सूत्र के तंत्र के समय जब ध्यान करते हैं, तो जब हमारे निरोध की बातें होती हैं उसके बारे में अभ्यास ज़्यादा किया जाता है, और सुनता सुनता भी जो हमारे महंगा है उस पर निर्भर होता, उसका अभ्यास किया जाता। और तो ये तीसरे जिनके अवतार थे वो काफ़ी विद्वान थे, उनको अनुभव था, काफ़ी अभ्यास भी था। उन्होंने ऐसा कहा, जब जब सिद्धांत प्रमुख रूप से हो गए तो उस समय अभ्यास जो जो मेगा है अर्थात निरोध, उसका अभ्यास करना चाहिए। और जब अभ्यास करें जब जब अभ्यास करें तो अभ्यास के समय तो शून्यता का अभ्यास करना चाहिए और जो जो महंगा है उसका अभ्यास करना चाहिए। तो चंक्या रूलवे चंक्या उनके जो बायोग्राफी अर्थात जीवनी उनमें देखने को मिलता है, इसलिए बहुत सारे जो पौचार्य दर्शन हैं उनको पढ़ना चाहिए और उसके उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना चाहिए और प्रमाण के अनुसार उसका जांच पड़ताल करना चाहिए। यहाँ पर जो शब्द आ रहा है वो लमरीम छेम्बो का शब्द है, वो वहाँ पर कोट किया गया है। और इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद और जो जो भगवान बुद्ध का दर्शन है किसी के लिए भी विरोध का विरोध पैदा नहीं करता, ऐसा उसको जांच पड़ताल करना चाहिए। और जो जो इसमें विषय है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार का विरोध पैदा ना हो। तो यहाँ विषय के बारे में चर्चा की जा रही है। फिर दूसरा यहाँ भाग यहाँ होता है कि जो हमारा ग्रंथ हैं वो बिना छूटे हुए या फिर परिपूर्ण ग्रंथ के उपदेश हैं वो किस प्रकार से पैदा होने चाहिए, किस प्रकार से प्राप्त करने चाहिए, उसके बारे में पाठ होता हुआ। अगर हम जो बोधसत्व यहाँ कहा जा रहा है कि बोधसत्व के क्रम हैं, बोध चित्त या बोध सत्य के जो बोध सत्य प्राप्त करने के जो क्रम हैं उनको अगर ठीक से नहीं जानेंगे तो हमारे जो उपदेश हैं उनको ठीक से नहीं समझा जा सकता है। और यहाँ पर जय रिम्बुच इत्याद अपने बिहार में रहते समय किशोरस के पठन पाठन कर रहे तो उनके यहाँ पर व्याख्या की गई।
Так,
अगर जब तक इन अर्थों को नहीं समझेंगे तब तक उसका अभ्यास ठीक से नहीं किया जा सकता है। फिर आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि लमरीम जो है उसको केवल सुन लेने भर से, उसका पाठ सुन लेने भर ही काफ़ी है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो उस ग्रंथ, इस ग्रंथ को बार बार पढ़ करके और जो हमारे कल्याण मित्र हैं उन पर निर्भर होना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, विस्तार से सीखना चाहिए। फिर अगली, इसके बाद अगला तीसरा भाग यहाँ पर प्रारंभ होता है कि जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है उनका क्या, उनकी क्या सोच थी, उनको जल्दी समझने के लिए उनको शीघ्र किस प्रकार से समझा जाए, इसके बारे में पाठ होता हुआ। और इस प्रकार से उसको समझने से, उनको जल्दी समझने से हम किस प्रकार बुद्धत्व की प्राप्ति याद किया जा सकते हैं, इसके बारे में भी जिक्र हो रहा है। और लमरिम, इस लमरिम को पढ़ने से बाकी के जो ग्रंथ हैं उनको भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। फिर चौथा अभ्यास, जो हमारे बुराइयां हैं, जो हमारी बड़ी बुराइयां हैं, उनको किस प्रकार से रोका जाना चाहिए, यहाँ पर इसके बारे में जिक्र हो रहा है, पाठ हो रहा है। और जो भी धर्म है, जो भी बुरे धर्म है, उनको छोड़ना चाहिए, जैसा कि समाधिराजा सूत्र में भी कहा गया है। उसके बाद जो शब्द है, उसके शब्द का क्या अर्थ होता है, उसकी विशेषता के बारे में। और जो विशेष तो बोध पथ प्रदीप के समय में भी, यहाँ पर बुद्ध पथ प्रदीप के समय में यहाँ से इसकी व्याख्या की गई है। और उसको खासकर जो अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए जो विषय है उसका अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि बुद्धचर्यावतार में देखा जाता है, सबसे पहले जो हमारे बुद्धचर्या का अभ्यास करने के क्या क्या फायदे हैं, बुद्ध चित्त के क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में व्याख्या की जाती है। तो उसके चतुशतक से उसको कोट किया जाता है। फिर इसके बारे में जमजू की जो लमरिम चैम्पे है उसके अर्थ को संक्षेप में के रूप में दर्शाए बताना, संक्षेप के रूप में व्याख्या करना। तो ये जो लमरिम चैम्पो है वो फर्चीन इत्यादि के जो ग्रंथ हैं उनको उनके एक तरह के दरवाज़ा खोलने के समान है, एक तरह दरवाज़ा खोलने की चाबी के समान है कि इससे इसको पढ़ने से अन्य ग्रंथों को समझने में आसानी होती हो जाती है। फिर जी इसकी दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता उसके बारे में, क्योंकि इस भवचक्र में बहुत सारे दुख इत्यादि होते हैं, उनसे किस प्रकार से मुक्त हो जाए, तीसरी दूसरी विशेषता होती है। फिर तीसरी इसकी विशेषता है कि नागार्जुन इत्यादि की जो परंपरा के विद्वान लोग रहे हैं, जैसे कि लामा खिजू या फिर थोगमे इत्यादि, और लामा शिलंगपा इत्यादि के जो उपदेश हैं वो बहुत विशेष रहे हैं। इसकी विशेषता के बारे में वर्णन किया जाता है, इसके बारे में जामा चुंकापा जी ने भी व्याख्या की है। क्योंकि इस दुनिया में अगर प्रकांड विद्वानों की बात की जाए, सिर फिर दूसरा इसका भाग यहाँ से प्रारंभ हुआ होता है कि धर्म की विशेषता है क्या होती है, इसके बारे में पाठ परम पावन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भाग है या ये जो यहाँ से अध्याय शुरू होता है काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर खुद इसको नहीं सीखेंगे, खुद नहीं सुनेंगे, या खुद हम लमरिम इत्यादि को नहीं सीखते हैं, दूसरे को भी نہیں سنایا جا سکتا, اس کو بھی نہیں بتایا اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے, تو خود پہلے سیکھنا چاہیے. جی اسی پرکار سے سیکھ دھرم کو سیکھنا چاہیے, جاننا چاہیے جیسے کہ اپنے پریوار میں کیا کیا چیزیں ہیں کیسے ہیں, تو ان کو جیسے ہم جان لیتے ہیں تبھی دوسروں سے ذکر کیا جا سکتا ہے. اسی پرکار سے پہلے خود ان کے بارے میں جان لیں, اس کے بعد ہی دوسرے سے ذکر کیا جا سکتا ہے. جن کو کر سکیں ان کو کرنا چاہیے, اور جن کو نہیں کیا جا سکتا ان کا نشید کرنا چاہیے, ایسا ذکر کیا جا رہا ہے. جو اچھائی ہے برائی ہے, تو جو اچھائی اس کو گرہن کرنا چاہیے, برائی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو کیسن لمرے نام کے جو نمنی بک کافی اچھی ہے, اس میں جو بڑے گرنتھ ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. کسی کانڈل بھی کافی اچھا ہے, کیونکہ ان کے اندر دو پرکار کے گیان تھے, جو کہنے کا مطلب جو بھارتی گرنتھ ہیں اور تبتی گرنتھ, دونوں کا ان کو اچھا گیان تھا. Thank you. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई गुरु है वो शिष्य के बराबर भी अध्ययन नहीं है उसको, तो शिष्य में कोई परिवर्तन नहीं करता, उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए पहले अपने आप को पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिष्य से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोपहर का प्रवचन रोका जाता है।